نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سورة بقرة آیت نمبر 216 سے 220. آج کا ہمارا سبق ہے. ہم نے پیچھے آیت 215 میں یسألونک ماذا ينفقون کی بات کی تھی. صحابہ کرام کے سوال تھے. اس سبق میں دوبارہ یہی سوال دہرایا جائے گا اور انشاءاللہ ہم اس آخری حصے کی کچھ چیزیں آج کے سبق میں بھی کریں گے. یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی, میں آپ سبھی کو ایک چھوٹی سی چیز کا مزید احساس دلانا چاہتی ہوں کہ جب آپ ایک دن کا سبق مس کر کے اگلے دن کا سبق سنتے ہیں تو آپ اگلے دن بھی بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, قرآن جو ہے ایک موتیوں کی لڑی ہے اور اس لڑی کے اندر سے اگر ایک آدھا موتی نکل جائے اور ایک اس کی جگہ پہ گانٹھ ڈال دی جائے تو وہ خوبصورتی نہیں رہتی. تو جو لوگ کسی مجبوری میں نہیں سنتے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے اون پہ اس کو بعد میں سن کے آئیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ الحمدللہ موجود ہے, ایپ کے اوپر بھی ہے, ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور بغیر سنے اگلے دن سننا یہ بہت خطرے کی بات ہے. اصل یہ بات تھی. آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 216 سے. چلیے پہلے آیت کا ہلکا سا خلاصہ اور پھر انشاءاللہ اس میں سے الفاظ کی کچھ وضاحت ہوگی, پھر اس کی تفسیر دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. تم پر جنگ فرض کی گئی حالانکہ تمہارے لیے یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے. کوئی بات نہیں. وآسان تکرہ شیئن, اور امید ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند لگے, یعنی تم مکروہ جانو کسی چیز کو, جبکہ وہو خیر لکم, وہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہو. یعنی زندگی کا ایک بہت اہم اصول سکھا دیا اس چھوٹے سے ٹکڑے میں. اور اس کا اپوزٹ, وَأَسَاءً تُحِبُّ شَيْئًا, اور یہ بھی امید ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو, جبکہ وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جبکہ تم نہیں جانتے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ہم نے اقسام بر پڑھی تھی, آپ اس کو یاد کیجیے. آیت بر آیت 177 تھی, وہاں ذکر ہوا تھا کہ اس کے بعد اب پارے کے آخر تک اقسام بر ہوں گی. بعض دفعہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے, ہر وہ کام جس کو کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی, ہر وہ کام جس سے ہمیں سکون ملے گا, بہت مزہ آئے گا. حالانکہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو نیکی کا ہر کام مزے کا نہیں ہوتا. اصل میں اس ایک آیت میں ہمیں نہ صرف یہ کہ جنگ کی حکمت اور اس کی طرف توجہ دلائی گئی, بلکہ زندگی کا ایک اصول سکھا دیا کہ تم اپنی زندگی میں ہمیشہ من پسند چیزیں چاہتے ہو. ایک بگڑے ہوئے بچے کی طرح جس کو چاکلیٹ ہی چاہیے, کھجور نہیں چاہیے, جس کو کوک چاہیے, دودھ نہیں چاہیے, وہ ماں کے ساتھ سر پھوڑتا ہے. جتنی مرضی کوشش کر لے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کی ماں اس کو کڑوی گولی کیوں کھلاتی ہے, جبکہ وہ سوچتا ہے کہ میرے لیے میٹھی گولی میں خیر ہے. تو یاد رکھیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اور وہ ہمارے مقدر کا بھی فیصلہ کرتا ہے. یہ آیت اصل میں آپ کو تقدیر کی بھی ایک گتھی سمجھائے گی کہ جب ایک انسان اللہ کے اوپر نظریں لگا لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا فرض کیا ہوا ہر حکم بندے کو سمجھ آئے, اور یہ بھی فرض نہیں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا اسے انسان کی طبیعت بھی کراہت پائے. نہیں, بہت دفعہ نفس تو بالکل اس سے اپوزٹ چاہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مانو کیونکہ میں رب ہوں, تمہیں میرے اوپر اعتماد کرنا ہوگا, تم مجھے بڑا سمجھو. جیسے آپ اپنے بچے کو کہتے, بیٹا آپ کو نہیں پتا اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا نقصان ہے, یہ وہ, تو لہٰذا ایسے وقت میں انسان پھر اپنی مغز ماری کر کے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کرے. اصل میں مکہ میں 13 سال صحابہ کرام نے بہت مشکلات سہی, اور جب وہ مشکلات پڑتی تھی تو آگے سے ایک اس سے بھی بڑی مشکل تھی, اور وہ کیا تھی, کفو ایدیکم, جواب نہیں دینا. آپ ذرا سوچئے, گالی کھانی ہے, جواب میں گالی نہیں دینی, مار کھانی ہے, جواب میں مارنا نہیں ہے. کتنا مشکل ایسے جیالے اور ایسے بہادر لوگوں کے لیے جو کہ واقعی نڈر بھی بہت ہے. تو صحابہ کو روکے رکھا کہ تم اب نہیں کر سکتے یہ کام. اب کیا ہوا, مکہ کا دور گزر گیا. سورۃ نساء میں ہم یہ آیت پڑھیں گے, کفو ایدیکم, کے ہاتھ رکھو, ابھی کچھ نہیں کرنا. بات ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ مسلمان مکہ سے مدینہ میں آ گئے. ہجرت کر کے انہوں نے اپنی سچائی تو ثابت کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, لیکن ابھی کچھ کمی بیشیاں موجود تھیں. سورت بقرہ سے پہلے سورت محمد نازل ہو چکی تھی, یہ لکھ لیجئے, پھر آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. اور سورت محمد, جس کا دوسرا نام ہی سورت قتال ہے, اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی. جب وہ حکم آیا تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے. کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ پریشان پایا کہ لو اب ہم جنگ بھی کریں. خاص طور پہ منافق, ان کی زبانیں کھل گئیں, کہنے لگے بھائی صلح جوئی سے کام لو, بس دعوت اور تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لاؤ, یہ جنگ و جدال لڑائی بھڑائی یہ تو کوئی اچھا کام نہیں ہے, اور اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, پھر لوگ تمہیں باتیں کریں گے, یہ لڑتے ہیں. یہ بالکل وہی پرسیپشن ہے جو آج بھی ہے کہ اسلام لڑاتا ہے, اسلام لڑتا ہے, باقی دیکھو لو لو لو, پیس پیس پیس, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ میٹھی میٹھی باتیں کرو. تو اس قسم کی باتیں کچھ لوگوں نے شروع کر دی, جس کی وجہ سے وہ مسلمان جن کا ایمان قدرے کمزور تھا, لیکن وہ منافق نہیں تھے, لیکن ابھی ایمان کے وہ درجے بھی نہیں ہیں جو کہ جنگ کرنے کے لیے قتال کے لیے مطلوب ہوتے ہیں. ایمان ابھی تازہ تازہ تھا, تربیت کے مراحل ابھی گزرے ہی نہیں. ان کو بھی یہ حکم تھوڑا سا بوجھل لگا. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت ساری چوٹیں کھا کر سنبھلے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی اس کے بغیر ہی اپنے آپ کو آگے کر رہے ہوتے ہیں. خیر قصہ مختصر ہوا کیا, انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا. یہاں لفظ آ گیا کتیبہ. کتیبہ لفظ کو دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. پیچھے بھی یہ لفظ پڑھا آپ نے کہیں, کتیبہ علیکم السلام. کتیبہ کا لفظ یہاں فوریزہ کے معنوں میں ہے, اگر آپ دیکھیں تو فوریدہ, لیکن اصل میں یہ لفظ ہے کیا؟ کتبہ کہتے ہیں عرب لوگ اپنی اعلیٰ نسل کی اونٹنیوں کی شرمگاہ کو لوہے کے چھلے سے بند کر دیتے تھے, تاکہ ہر ایرے غیرے اونٹ سے وہ حاملہ نہ ہو. اس عمل کو کہتے تھے کتب الناقہ, ناقہ کو باندھ دیا. آج بھی گھوڑوں کے ساتھ ہمارے اپنے ملکوں میں ایسا کرتے ہیں. بعض لوگ گھوڑے کی نتھنی جو ہوتے ہیں نا, یہ جو ناک ہوتے ہیں نیزلز, اس کے اندر ایک کڑا سا ڈال دیتے ہیں, یا چمڑے کے تسموں سے سی دیتے ہیں تاکہ گھوڑا اپنے بچے کو نہ سونگے. ہوتا ہے وہ, اس بچے کو سونگ لینا تو پھر وہ کام نہیں کرتا, وہ اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگ ان کے نتنوں کو سی دیتے ہیں, اس کو بھی کتبہ کہتے ہیں. اسی طرح مشکیزہ یا بوری کو سینا, اس کا منہ بند کرنے کے لیے سی دیا جاتا ہے. تو آپ کو ان تین مثالوں سے پتہ چلے گا کہ کتبہ کا معنی کہتا ہے پائل اپ کرنا, منتشر اور بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کر دینا. پھر اسی سے لفظ کتاب بنا, کتیبہ بنا, سب کچھ بنا. پہلے شروع میں قرآن پاک مختلف صفوں پہ ہوتا تھا, کھجوروں کے پتوں پہ, ہڈیوں پہ ہوتا تھا, بعد میں اس کو کتابوں کی صورت میں محفوظ کیا گیا. اب یہاں لفظ ہے کتیبہ, فعیلہ کا وزن ہے, مجہول ہے, پیسیو وائز ہے, یعنی فرض کر دیا گیا. کس نے کیا؟ پہلے تو میں لفظ تھوڑا سا یہاں بول کے آپ کا شعور چاہوں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے, ہم بغیر حدیث کے سمجھے ہی قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں. تو پیچھے تھا کتیبہ علیکم السیام, وہ کس کے لیے تھا؟ روزہ کس کس پہ فرض ہے؟ عورت پہ بھی فرض, مرد پہ بھی فرض, سب پہ فرض ہے جو آپ کو پتا ہے. اب یہاں بھی وہی لفظ ہے. اب آپ بتائیے کہ وہاں روزہ چونکہ ہر ایک پہ فرض تھا, تو کیا یہاں پھر جہاد بھی سب پہ فرض ہے؟ ہمیں کون بتائے گا کہ سیام کے ساتھ آئے ہوئے کتیبہ میں اور قتال کے آئے ہوئے کتیبہ میں کیا فرق ہے؟ وہ فرض عین ہے, نہیں رکھے تھے رکھنے پڑیں گے. پچھلی زندگی کے چھٹے ہوئے میک اپ کریں, کوئی مر گیا تو اس کے ولی جو اس کے وارث ہیں وہ اس کے وہ روزے رکھیں گے, یہ سب کچھ ہے. لیکن آج ہم جہاد کی بات اگر کریں, یہ فرض کفایہ. کسی سوسائٹی میں, کسی کمیونٹی میں کچھ لوگ اگر جہاد کر لیتے ہیں باقیوں سے کفایت ہو جاتی ہے. جیسے نماز جنازہ, عام نماز فرض ہے, مجھے آپ کو ہر ایک کو پڑھنی ہے, لیکن اگر نماز جنازہ کسی سوسائٹی میں کوئی بھی نہ پڑھے پھر سب گناہگار ہیں, اور چند لوگ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں کی نہیں. تو یہاں سے آپ کو حدیث کی اہمیت سمجھ آتی ہے. یہ جملہ لکھیں, صرف ڈکشنری سے ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے, وہ تو کتیبہ کی آپ کو بڑی لمبی تفصیل دے دیں گے, اور یہ کتابت کے طور پہ آگے آپ پڑھیں گے. ایک خاص ایک ٹرمنالوجی بھی ہے, سورت نور میں ہم پڑھیں گے, कि जो किसी भी गुलाम ने अपने आज़ादी के लिए कीमत रखी होती है, इसको मुकातबत कहते हैं। तो यहाँ बस ये समझ लीजिए कि कुतिबा अलैकुम, तुम पर। अलैकुम कौन है? तुम मुसलमान। अला और कुम का जमा थी। लफ्ज़ अला पे मैंने आपसे पीछे वादा किया था कि मैं थोड़े थोड़े फ़र्क देती जाऊंगी। आपको पता है कि लफ्ज़ अला कुरान पाक में 15 मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है। आज चूंकि सबक के शुरू में है तो थोड़े से लिख लीजिए। अला का एक मानी होता है ऊपर, पर, ख्वाह हकीकतन हो, जैसे वह अलल फुल की तहमलून, तुम कश्तियों पर सवार किए जाते हो, तुम कश्ती के ऊपर बैठे होते हैं ना। और मजाजन भी आता है, मजाजन के मतलब मिसाल देने के लिए, लाइक फद्दलना बादहुम अला बादिन, 253 आयत है सूरत बकरा ही की, हमने बास को बास पे फजीलत दी। समझ आ गई? जैसे आप देखिए ना कि ये मेरा बैग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये हकीकी ऊपर पड़ा हुआ है ना। लेकिन हम कहते हैं कि आपकी दूसरों के ऊपर ज्यादा अहमियत है, तो वो हकीकत में तो नहीं कहीं पड़ी हुई ना, तो ये दोनों मानों में आता है, ठीक है। पर दूसरा इलाका मानी होता है करीब के मानों में। कुरान में आता है औ अजीदु अलन नारी हुदा, यह सूरत मरहल मरियम की आयत है, यह सूरत कसस की आयत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए आता है कि उसमें आग के करीब किसी को रहनुमा देखो। तो वहां अला का मानी के करीब, क्लोजनेस के मानों में। तीसरा इसका मानी होता है बावजूद, बिकॉज ऑफ दैट, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे व आतल माल अला हुब्बिही। अभी पीछे ही पढ़ के आए हैं आप थोड़े दिन पहले, आयत 177 में क्या आया था, माल की मोहब्बत के बावजूद इसे दूसरों को दे। अब आपने कभी सोचा बैठ के व आतल माल अला हुब्बी क्यों है, मोहब्बत के ऊपर? नहीं, तो यहां आपको अला का मानी बावजूद आ गया, ठीक है। चौथा मानी होता है अला का मिन, से के मानों में। से इंग्लिश में फ्रॉम। इजक तालु अलन नास, सूरह मुतफ़िफ़ीन की आयत 2 में क्या आता है, इजक तालु अलन नास, जब वो लोगों से नाप लेते हैं, ठीक है। तो मिन के मानों में भी कभी आता है। एक और बताती हूँ, बाकी फिर जहां कहीं अला आएगा तो याद कराइएगा, तो फिर अगला मानी वहां बताऊंगी। पांचवा इसका मानी होता है की वजह से, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह के निजाम को बुलंद करो इस वजह से या इस बुनियाद से कि इसने तुमको रहनुमाई दी। ये भी पीछे आप पढ़ चुके आयत 185 में, रमजान के बाद कि ये जो ईद की नमाज है उसके अंदाज में आता है। अब आप देखिए कि अरबी जुबान की वसतें अगर आप देखें तो ये इतनी बड़ी चीज है कि मैं और आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते, तो फिर आप मैं इसका हक कैसे अदा कर सकते हैं। उठते बैठते चलते फिरते, कभी बैठे कभी ना बैठे, कभी तवज्जो दी कभी ना दी, नहीं। तो अलैकुम था ना, कुतिबा अलैकुम, कुम क्या है, का से कुम जमा है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल है, यानी बहुत सारे लोगों के लिए ये लफ्ज आता है। यहां कौन मुराद है, तुम सब मुसलमान। लिखिएगा, जिहाद सिर्फ मर्दों पे फर्ज है। कौन सा जिहाद, जिसको यहां किताल कहा गया, इसीलिए जमा की जमीर मुजक्कर के लिए आई है। अगर यह आयत ऐसी होती कुतिबा अलैकुम कुन्नल किताल, तो क्या मानी होता, तुम सब औरतों पे भी जिहाद फर्ज हो गया। हालांकि अलैकुम में बाज दफा औरतें मर्द सभी आ जाते हैं सीगा तकलीफ की वजह से, लेकिन यहां खास तौर पे अलैकुम से मुराद मर्द है। अल्लाह ताला ने औरतों को किताल से आजाद रखा है, क्योंकि औरत की जिंदगी का फील्ड कुछ और है, उसको अपने आप को उसी में रखना चाहिए। खैर, क्या फर्ज किया, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल। क़िताल क्या है, आप इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, पीछे भी किया था, आपको अंदाजा किया है, तो पीछे गुजर चुकी है, इसे मिलता जुलता हम मजमून चंद दिन पहले पढ़ के आए, ये बार बार क्यों मौजू आ रहे हैं। अब यहाँ एक्सा में बिर में आ रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा की शरीयत है। तो कत्ल कहते हैं हथियार की जर्ब या पत्थर या जहर वगैरह से किसी को मार देना, जान निकालनी। अच्छा, ताप जज़्म देखे, कत्ल, कत्ल होगा तो क्या मानी है, टू किल, मारना। लेकिन ताप जबर जेर कुछ आ जाए, जैसे यहां है ताप जबर, तो क्या मानी होगा, टू फाइट। फर्क समझे, पीछे भी बताया था आपको, ता के ऊपर जज़्म है कत्ल, तो किल का मानी। आपको पता कि नॉन मुस्लिम इस एक फर्क को निगेट करने की वजह से सूरत निसा की एक आयत है, औरतों को मारो, उसको कहते हैं औरतों को कत्ल ही कर दो। लड़ाई और मार में फर्क होता है, ठीक है। तो यहां क्या पता चला, इसी तरह कत्ल का एक मानी होता है जलील और हकीर करना, क्योंकि बंदा जब किसी को कत्ल करता है तो जलील और हकीर ही कर देता है ना। फिर इसी तरह इसका एक मानी होता है झुका देना, जलील करने और मार डालने का मानी है। और कुरान पाक में आप पढ़ेंगे कुतिल अल इंसान उमा अकफरा, कत्ल किया जाए इंसान क्या कुफर करता है। यह हकारत का अंदाज है कि इंसान को इतनी भी अकल नहीं है कि एक रब को छोड़कर किसी और के साथ चलता है। फिर इसी तरह आगे आप पढ़ेंगे कातलहुमुल्लाह, अल्लाह ताला इन पे अपनी मार डाले, यानी इनके इन गलत कामों में रखे। तो कहने का मतलब ये कि कत्ल के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसी मौजूद है जो कि दूसरी चीजों की रुसवाई और उसकी जिल्लत और उसको झुका देने की आती है। और किसी को मार के बंदा इससे ज्यादा और हकीर क्या करेगा कि देखो मैंने तुम्हें उस हक से महरूम कर दिया। यहां मुराद है जंग। किन से जंग? जिन्होंने तुम्हारे साथ जंग की। हालांकि वह हुआ और वो, वह हुआ, चलिए वह के भी मानी लिखाओ। वह का मानी क्या हम आमतौर पर पढ़ते हैं? और आमतौर पर पढ़ते हैं वही या का नाबुदु, या कह लीजिए अनाम हम वान फुस हम, दो चीजों के बीच में आए तो और का मानी होता है एंड का मानी इंग्लिश में। दूसरा वो का मानी होता है मा साथ, विद के मानों में। फजमेउ अमरकुम व शुरका, तुम अपने मामले को अपने शुरका के साथ मिलकर पुख्ता कर लो। इसी तरह कभी कभी वो जो होता है ना या के मानों में भी होता है, औ के मानों में। बेहबल मिन अल्लाह व हबल मिन अन्नास, सूरत आल इमरान की आयत 112 में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह के अहद या लोगों के अहद के साथ, तीन ही बहुत है, बाकी दोबारा याद कराइएगा। वह हुआ, हुआ और वो, हुआ से यहां मुराद है किताल। वाहिद मुजक्कर की जमीर है। क्या पता चला कि ये जंग करना जो तुम पे फर्ज किया गया ये तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन है क्या? कुरहुन लकुम। कुरहुन का लफ्ज देखिएगा काफ रहा, उर्दू में कभी सुना? कराहत, मकरूह। तो अकरह, अकरहू कहते हैं सख्त नापसंदीदगी को और मुशक्कत को, दो चीजें हैं। मकरूह चीज क्या होती है? कराहत वाली, नापसंदीदगी वाली, जिस काम पर खुद तुम्हारा नफ्स ना ख्वास्ता तौर पर तुम्हें मजबूर करे, वो कुरहन है। समझ आई? मकरूह चीज के जिसको नफ्स करना नहीं चाहता, डिसलाइक करता है, जिस पर कोई दूसरा उसको मजबूर करे। देखिए आपको मैं इतना बारीक फर्क बताने लगी, अगर आपकी भी तवज्जो ना हुई, मेरी भी भटकी तो मैं भी गलत बता दूंगी। यहां क्या लफ्ज है? कुरहन, लिखिए जरा अलग से अपने नोट्स में, काफ की पेश है ना। कुरहन होगा ना तो ये कौन सा काम है जो आपके अपने नफ्स को अच्छा नहीं लग रहा? जबकि काफ पे जबर कर देना करहुन, तो वो काम है जो दूसरा उसको मजबूर करे। कितना बाल से बारीक फर्क है, कितनों को समझ आ गई है? यहां ये जो बात है कि किताल तुम पे जो फर्ज किया जा रहा है, वह हुआ कुरहुल्लकुम, इसका अंदर ये तुम्हारे नफ्स को नहीं अच्छा लगता। और अगर गलती से या हिफ्स के दौरान कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते जल्दी में कुछ और बोल दे और वो कह दे वह हुआ करहुल्लकुम, तो मतलब बिल्कुल अपोजिट हो गया। ये बारीकियां मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये वो चीज है जो आपको कभी कहीं नहीं मिलेगी। कुरान पे गौर व फिक्र करने का यही फायदा है कि दिन ब दिन इस कुरान पर ईमान बढ़ने लग जाता है। और फिर इसमें आप देखिए कि इतनी जबरों जेरों से फर्क पड़ जाता है कि इंसान खुद ही हैरान हो जाता है। तो यहां क्या कह दिया कि वो काम तुम्हारे नफ्स को ही अच्छा नहीं लगता, तुम खुद ही वो काम पसंद नहीं करते। खैर, लकुम तुमको, तुम्हें नापसंदीदा, यानी अल्लाह ने दिल का चोर पकड़ लिया कि मुसलमानों तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लगती। हालांकि वह असा, अब आ रहा असल लफ्ज, वह असा, कभी लफ्ज सुना असा का आपने? और उम्मीद है, कभी हम कहते हैं असा का मनी पता नहीं, शायद है, उम्मीद है, क्या है? तो नोट कीजिएगा, असा का लफ्ज जो है ना अरबी जुबान में चार मुख्तलिफ मानों में आता है, फोर डिफरेंट थिंग्स है। एक क्या है? रिजा, उम्मीद, उम्मीद है। आसान तो हिब्बु शैयन, उम्मीद की जाती है। फिर इसी तरह से इश्फाक, डर के मनों में भी आता है, यानी मुझे डर है, डाउट, जिस तरह आप इंग्लिश में कहते हैं ना डाउट इट, मुझे खौफ आ रहा है कि ये तुम्हारे साथ काम हो ना जाए। इसी तरह तवक्को, रिजा क्या थी? होप, उम्मीद, और तवक्को क्या है? पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर इसी तरह से शायद, मे बी के मानों में। सारी बात का खुलासा क्या है कि ऐसा का मानी चार मानों में आता है। नंबर एक, करीब है कि ऐसा हो जाए। नंबर दो, उम्मीद है कि ऐसा हो जाए। नंबर तीन, ऐसा भी हो सकता है कि। और चौथा शायद ऐसा हो जाए, है कोई दुनिया की जुबान और। सिर्फ दो लफ्ज है या डाल लें तो तीन लफ्ज है, आइन सीन या, शायद ऐसा हो जाए। और ये हम पढ़ेंगे कुरान में वो सारी लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल हुए, यहां जो लफ्ज आया ना वो कौन सा मानी अभी आप बताएंगे। हो सकता है जी, बिल्कुल उम्मीद है कि हो, ऐसा भी हो सकता है कि क्या अन तक रहू शयन, जो वही कुरहन वाला आ गया कि तुम नापसंद करो किसी चीज को, शयन कुछ, शयन के लफ्ज की जरूरत थी, अन तक रहू काफी था बस, शयन की बात ना की जाती। सवाल समझ आता है पहले मेरा? देखिए ना आयत हम पढ़ रहे हैं, पीछे किताल की बात हो रही है, हम सबको पता है अल्लाह ताला कह रहे हैं कुतिबा अलैकुमुल क़िताल वहुवा कुरहुल लकुम, सबको समझ आ गई बात, तुम पे जिहाद फर्ज कर दिया गया जबकि तुम्हें पसंद नहीं, तो वह ऐसा अन तक रहू, इतना भी बात कह जाती तो हम समझ जाते हैं ना कि जहां बात किसकी हो रही है, किताल की, तो सवाल पैदा होता है आगे शयन की बात क्यों आई है। सवाल समझे जी, आप बताइए।
इसको जनरल करने के लिए शयन किसी भी,
ठीक है शाबाश, यानी इसको जनरल कर दिया कि यहां सिर्फ जिहाद ही की बात नहीं बल्कि कुछ और भी है। और चलिए ये बताइए कि शयन से मिलता हुआ कोई लफ्ज या कुछ हम बोलते हैं अरबी उर्दू में, तो जरा सब बोल सकते हैं, इसका रूट क्या होगा? शीन या हमजा, ठीक है। शाह का लफ्ज पढ़ते हैं आप, इंशाल्लाह माशाल्लाह, उर्दू में आप पढ़ते हैं शई फलां शई, अशिया का सुना, अशिया के रेट बढ़ गए, ये सब एक ही लफ्ज है। इसका लफ्जी मानी होता है इरादा करना। अब आप फर्क देखिएगा कहां से कहां जाके जुड़ता है, यानी शाह ये शाह शयन मशहिया, इसका मानी होता है इरादा करना, और इरादा कैसा करना जिसके अंदर तलब भी हो। हम जब कहते हैं ना माशाल्लाह, जो अल्लाह ने चाहा, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, जब शयन के मानों में आता है जैसा कि अभी इधर है शयन है ना, तो शयन वाहिद होगा, तो ये हर मौजूद चीज के लिए बोला जाएगा चाहे उसको हम महसूस करें या ना करें, मसलन जिस्म जहन, यानी कहना चाहिए कि जो चीज आप महसूस कर सकते हैं पकड़ सकते हैं, नहीं हर छोटी बड़ी चीज के लिए लफ्ज शयून इस्तेमाल हो जाता है। और याद रखिएगा कि अल्लाह सुबहाना तला ने शयन कहकर इसको नकिरा में पेश किया, आप देख रहे हैं ना शीन के ऊपर जबर है शय अन, आगे तनवीन आ गई ना एंड पे, नकिरा क्यों है? छोटी से छोटी चीज जिसको तुम कुछ भी नहीं कहते, अल्लाह ताला कहते हैं अंतक रहू शैयन, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला कोई मामला तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें कोई इंसान अच्छा नहीं लगता अपने इर्द गिर्द रहने वालों में, तुम्हें कोई अल्लाह का कानून अच्छा नहीं लगता, तुम्हें दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, तुम्हें निकाब अच्छा नहीं लगता शरीयत में से ढूंढे, तुम्हें सूद से बचना अच्छा नहीं लगता। आप इस शयन के बीसियों डायमेंशन बना सकते हैं, तुम्हें अपने माँ बाप अच्छे नहीं लगते, तुम्हें अपना माहौल अच्छा नहीं लगता, तुम्हें अपना नाक नहीं अच्छा लगता, तुम्हें अपनी आंखें नहीं अच्छी लगती, तुम्हें अपना रंग काला लगता है, तुम्हें अपना कद नहीं अच्छा लगता। आप इस शयन को जिधर जिधर डाल लें, आप लिख लें आपकी मेरी जिंदगी में पेश आने वाली छोटी बड़ी चीजें सारी इसी के अंदर आती हैं। सब कुछ अल्लाह कह रहा है कि तुम खुदा नहीं हो, मालिक मैं हूं, तकदीर मेरे हाथ में, इन अल्लाह अला कुल्ली शयीन कदीर। वह शयीन का लफ्ज क्या है? वो यही लफ्ज है, तुम्हारी जिंदगी की छोटी बड़ी चीजों पे मैं मालिक हूं। ला तजजी नफ्स ना नफ्सिन शैया, याद आ गई आयत 48 सूरह बकरा की, कोई नफ्स किसी के कुछ भी काम नहीं आएगा। तो ये है असल में खुश रहने का राज, कि अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ दो। मुझे तो सच्ची बात है जिंदगी का यही खुलासा समझ आया है, बंदगी है ही ये कि अपनी चॉइस को अल्लाह की चॉइस से जोड़ दो। अब देखिए इंसानों में हम दूसरों को खुश करने के लिए कई जगह कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपको भिंडियां नहीं पसंद, आपके शौहर को बड़ी पसंद है, फिर आप कहते हैं कि अब वो केले क्या खाएंगे, चलो मैं भी खाना शुरू कर देती हूँ, आपको मिर्चे बड़ी पसंद है, आपके शौहर को मिर्चे नहीं पसंद, आप कहते हैं चलो कोई बात नहीं ना, अब क्या मिर्चों का झगड़ा डाल के जिंदगी को खराब करूं, मैं मिर्चे खाना शुरू कर देती हूँ या छोड़ देती हूँ उनके लिए, है ना। जिंदगी के असूल में हम हर लम्हे जहां निभा करना होता है ना, जिसको आप कहते हैं गिव एंड टेक, हमें रूल्स नहीं पसंद, हम नॉर्वे में रहते हैं, हमें नॉर्वे के 10 रूल नहीं पसंद, फिर आखिर हम क्या कहते हैं, अब रहना है तो मानने पड़ेंगे। इसी तरह से आप अपने बच्चे से समझिए, आप बच्चे के मुंह में कड़वी गोली डालती हैं, असान तक रहु शयन, बच्चा नहीं पसंद करता उस काली गोली को, तो माँ क्या कहती है, वह हुआ खैरुल लकुम, ए मेरी बेटी ये तेरे हक में बड़ी अच्छी है। वह असा अंत हिब्बु शयन, दोबारा उसी का ऑपोजिट, और किसी चीज को तुम बहुत पसंद कर रहे हो, जबकि वह हुआ शरुल लकुम, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे चॉकलेट खाने से, जबकि तुम्हें चॉकलेट बड़े पसंद है ना ये जिंदगी का असूल। और आगे देखिए इंसान की बेबसी, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमुन, अल्लाह खूब जानता है तुम नहीं जानते। तुम्हारी इस छोटी सी खोपड़ी में ये नहीं आ सकता कि अल्लाह सुबहाना ताला के बड़े बड़े फैसलों को मानो। आप देखिए कि बाज दफा इंसान की जुबान जब खुलती है ना, तो वो अल्लाह पे भी बहुत बातें करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये ऐसा मेरे ही साथ क्यों हुआ, और मैंने नाउज बिल्ला सुम्मा नाउज बिल्ला अल्लाह का क्या बिगाड़ा था। आप दुनिया की कोई चीज उठा के खड़ी करके हाथ खोल के देख ले, आप उसको जिस एंगल से भी देखे उसमें भी खैर है। बस आप देखिए ना, सांप हमें अच्छे नहीं लगते, बिच्छू हमें अच्छा नहीं लगता, कॉकरोच हमें अच्छे नहीं लगते, छिपकलियां हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन क्या उसमें हमारे लिए कोई खैर है। आप वो इकोसिस्टम पढ़ाऊं, अगर कहीं जाके आगे बात हुई तो कुछ फिगर सुना दूंगी कि अगर सांप ना दुनिया में होते तो दुनिया में क्या नुकसान हो जाता। आपको पता है कनाडा में कुछ साल पहले की रिपोर्ट मुझे याद आई है कि उन्होंने मलेरिया को ख़त्म करने के लिए मच्छर मार दिए, मॉस्किटोज जो होते हैं वो सारे मार दिए, कि मलेरिया ऐसे बहुत सारी मौतें होती हैं हर साल। आपको पता है क्या हुआ, मच्छरों के मरने के बाद वहां दूसरे इतने जरासीम पैदा हो गए जो साइंसदानों के बकौल जिन जरासीमों को मच्छर खाते थे, कि आखिर उनको ब्रीड करने पड़े मच्छर के और मच्छर बना लो, ये मलेरिया से मरने वाले थोड़े, इस बैक्टीरिया से मरने वाले ज्यादा। आप और मैं बताइए, हम अल्लाह के किस किस कानून पे तनकीद कर सकते हैं। और याद रखिए, जिसको खुश रहना है ना, वो इस आयत पे अमल करेगा तो खुश रहेगा, वरना कभी भी खुश नहीं रहेगा। और लफ्ज़ हुब को भी देखिए, इसमें भी एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। अंतु हिब्बु शयन, हुब क्या है, हा बाबा, हब्बा किसको कहते हैं अरबी जुबान में, दाने को, बीज। लेकिन अल हब्बु से अल मुहब्बा, आपको पता है कि इस एक मादे से, हा बाबा से, पांच मुख्तलिफ मानी निकलते हैं हुब के। नंबर एक, सफेदी, वाइटनेस, सफेदी और सफाई यानी क्लीनलीनेस, जैसे अरब लोग कहते हैं हबबुल अस्नान, दांतों की चमक को कहते हैं, सिन कहते हैं दांत को, तो चमकते हुए दांत। इसी तरह लफ्ज हुब में क्या है, बुलंद होना। असल में तो ये सारी बातें मुझे आपको वल्लज़ी नामन अशद हुब्बल में डालनी थी, लेकिन हुब के मानी आप देखेंगे, ये जो हर वक्त हम मोहब्बत के गुन गाते हैं ना, ये है क्या, आज आपको इंशाल्लाह उसमें काफी मदद मिलेगी। तो पहला मानी मोहब्बत में क्या, सफेदी और चमक, सफाई। और हकीकत है, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके लिए उसका दिल बड़ा साफ होता है, उसको उसकी बुरी से बुरी बातें भी अच्छी लगती हैं। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो कहती है मेरे बच्चे से अच्छा दुनिया में है ही कोई नहीं है। हम अपने भाई बहनों से प्यार करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है ना, वो हमें सफेदी लगता है, सीधी सी बात है। वो कहते हैं ना कि एक बादशाह था, तो उसने किसी को कहा कि जाओ शहर के सबसे खूबसूरत बच्चे को ये खाना दे आओ। और एक शख्स को कुछ दिया, वो चला गया, थोड़ी देर बाद घूम फिर के वो आया, तो एक रोते धोते नाक बहते हुए गंदे मंदे काले पिटलोटे बच्चे के हाथ में वो चीज़ दे के आ गया। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हें सारे शहर में यही बच्चा अच्छा लगा। कहा जी बादशाह सलामत, यही अच्छा लगा। कहा कमाल है, क्यों? कह के इसलिए कि ये मेरा बच्चा है। तो कहते ना कि ब्यूटी लिव्स इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, मोहब्बत जो होती है ना आंखों में होती है, तो काले भी गोरे लगते हैं। ये लैला से भी तो किसी ने मोहब्बत ही की थी ना, काली कलौटी थी, थी अगर तो, या तो वो एक मेथ थी है, अगर वाकई लैला थी तो लैला रात को कहते हैं, काली औरत। लेकिन वो लैला का कौन था, मजनू, तो मजनू की आंखें खराब थोड़ी थी, वो हुब थी, उसको गोरी लगती थी। ठीक है, दूसरा मानी मोहब्बत के लफ्ज के अंदर के, बुलंद होना, जाहिर और नमूदार होना। हबाबुल माई कहते हैं पानी के बुलबुले को, अब इसको भी मोहब्बत में ले लीजिए। जब हमें किसी चीज से भी मोहब्बत होती है ना, वो हमें दुनिया का सबसे बुलंद और नमूदार चीज लगती है। कहते हैं बस जचता ही अब नजरों में ये। मुझे किसी मां का वो गम याद आ गया कि जिसकी बेटी ने मोहब्बत भी की, तो एक तो नॉन मुस्लिम से की, दूसरे वो फ्रीकी लड़का था और मोटा भी था और बद्दा भी था, तो माँ उसको जल के कहती थी कि तुझे मिला क्या इसमें, कहती मुझे अच्छा लगता है, यानी जिससे मोहब्बत होती ना वो हर चीज के ऊपर आ जाता है, जाहिर होना और बुलंद होना, प्रोमिनेंट होना। यानी आप देखिए आज ऐसे ही है दुनिया में, जिससे मोहब्बत होती ना वो आप सोचते इससे भी कोई मोहब्बत कर सकता है, लेकिन लोग उससे मोहब्बत कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो ये लफ्ज मोहब्बत के अंदर आता है। तीसरा मानी, किसी चीज का अपनी जगह ठहरे और जमे रहना। अरब लोग कहते हैं हब्बल बईरू व अहब्बा, ऊंट इस तरह जमकर बैठ गया कि फिर ना उठा। अब इसका मोहब्बत से क्या तअल्लुक है? आप कहते हैं बैठे हैं तो सवरे जाना किए हुए, तेरे कूचे पे ही दिल लगता है। अब गाड़ी का रुख ही उधर मुड़ जाता है बार बार, जिससे मोहब्बत होती है ना दिल करता बस बार बार उधर ही चले जाए। आपने देखा होगा हमारे मुल्कों में जब किसी से मंगनी शादी हो जाती है तो फिर बात बात पे लोग छेड़ते हैं ना। अच्छा, इंसानों की भी मोहब्बत होती है, चीज़ों की भी मोहब्बत होती है। जैसे आपने मिसाल ड्राइविंग सीखी तो आपका क्या दिल करता है? सारी गली की ग्रोसरी हम खरीद लाए, जरा सा कोई काम हो तो हमें कोई कहे हम जाए, है ना। मोहब्बत होती है, यानी जिससे मोहब्बत होती है ना बंदा उसके इर्द गिर्द जम जाता है। ठीक है, चौथा मानी इसके अंदर क्या आता है? किसी चीज का खालिस होना या इसका लुब्बे लुबाब और हकीकी जौहर। खालिस होना, आप देख ले जब मोहब्बत होती है कुछ और नजर नहीं आता, खुलासा। लुब्बे लुबाब कहते हैं लुब मगज को, ब्रेन को, हकीकी जौहर। हब्बतुल कल्ब दिल के अंदर वो जो एक जीने की चीज है ना उसको कहते हैं अरबी में। पांचवा मानी हब में हिफाजत करने का होता है, थामे रखना। अरब लोग कहते हैं हुब्बुल माई, मटका या ठेला या मशक जिसमें पानी महफूज किया जाए, या वो जो एक वो घड़ोंची सी नहीं होती जिसके ऊपर लोग घड़ा रखते हैं। पाकिस्तान में आपको याद होगा लकड़ी का ऐसा चौकटा सा बनाया होता है, क्योंकि घड़ा अमूमन नीचे से गोल होता है, वो जो नीचे चौकटा उसको ये कहते हैं लफ्ज, क्योंकि वो उस मटके को महफूज करेगा। तो यहाँ क्या समझ आई? जिससे मोहब्बत होती है, जिस चीज से मोहब्बत होती है बंदा उसकी हिफाजत करना चाहता है, उसको थामना नहीं चाहता। फिर मुझे कल की आयतें याद आ गई, कल सारा दिन मैं खुद ही बोलती रही, वो मैं युबद्दिल नेमत अल्लाही कुफरा, कि जो हिदायत की नेमत को कुफर से बदल दे, ना शुक्री से बदल दे, पर वो मोहब्बत थोड़ी है। वही बात जहां रख ले, आपको इस कुरान से मोहब्बत है, आप इसकी हिफाजत करेंगी, आपकी आंखों में इसके लिए वो तड़प और तलब और आंखों में चमक आ देगी। मेरी इस जिंदगी की ख्वाहिश और मेरी आप सबको ये दुआ है कि अगर आपने आज रात को पाकिस्तान जाना है ना तो आज सुबह की भी आप क्लास लेकर जाएं वल्लाही, और अगर आप आज आ गए हैं ना सुबह तो आप सीधा एयरपोर्ट से इधर आ जाएं। मैं इस पे अपने आप को सुरखुरु महसूस करती हूँ, मैंने अपने अमल से करके भी दिखाया है। लेकिन अगर हिफाजत की जरूरत नहीं, जाना आपने एक हफ्ते बाद है तो आप एक हफ्ता पहले ही जहनी तौर पर खराब है। यानी मैं आपको बिल्कुल दिल की बात कर रही हूँ, जिस दिन आप इस शहर में नहीं है वो आपकी मजबूरी है। आप इस शहर में और क्लास छोड़ते हैं, मान लीजिए इसकी मोहब्बत नहीं है, अल्लाह की कसम नहीं है, मैं कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। आप इसके मुकाबले में जाएं शॉपिंग करने, इसके मुकाबले में जाएं डॉक्टर पे, इसके मुकाबले में जाएं, अल्लाह खैर दे दे तो दे दे, लेकिन हम अपने आप को खतरों में डालते हैं। मोहब्बत वाली चीज की बंदा हिफाजत करता है। अब ये पांच लफ्ज सामने रख के अपने दिल को पूछेंगे कि क्या आसान तो हिब्बु शैयन, मैं मोहब्बत करती हूँ किसी चीज से, तो मेरी मोहब्बतों का किबला क्या क्या है? इमाम राग़िब हैं एक मुफस्सिर, ये सब जो है ना डिक्शनरी होल्डर्स हैं जिसको अहले लुगत कहते हैं, कहते हैं कि मोहब्बत के मानी इस चीज़ को चाहना है जिसे अच्छा और मुफीद पाया जाए, और इसमें तीन चीज़ें होती हैं। नंबर एक लज्जत, लज्जत होती है मोहब्बत में। अब एक तो औरत और मर्द की मोहब्बत है ना, मैं तो आपको इसकी फिर इबादत में लूंगी। फ़ाइज़ा फ़र्क तफन सब, क्या मेरी इबादत में मोहब्बत है? मेरा दिल करता है जल्दी से सब फारिग करूँ और मैं मुसल्ले पर खड़ी हो जाऊँ, सब चले जाएं और मैं जाय नमाज पर खड़ी हो जाऊं, सब सो रहे हैं और मैं रात को उठूं, ये मोहब्बत की लज्जत। चलिए औरत मर्द की मोहब्बत में जो लज्जत है उसको इसमें लेते हैं। दूसरी चीज मोहब्बत में फायदा होता है, मुफीद, नफा बख्श होना। जैसे हम मादी चीजों को चाहते हैं, फोन हमें नफा देता है, हमें इससे मोहब्बत है, फायदा मंद है, हम इसकी केयर भी कर लेते हैं। ठीक है, तीसरा पहलू क्या होता है? फजल और शर्फ। अहलेम जो है ना असल में वो इस दर्जे को समझते हैं कि मोहब्बत बंदे को, उर्दू में जैसे कहते हैं ना खुब जाना, खबो देती है, جب علم اور فضل کی بنا پہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، یہ تیسرا درجہ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے متاثر ہیں. اب امام سدیس کو ہم پرسنلی نہیں جانتے، لیکن ہم ان کی آواز سے متاثر ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. بشاری راشد کی آواز اچھی لگتی ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ابو بکر شاطری ہیں، جو بھی ہے، سمجھ ہے، کسی کی کسی خوبی سے ہم اپنے کسی استاد کی کسی خوبی سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. سائنسدان ہے، اس نے بہت بڑا کام کیا انسانیت کو دیا. تو یہ تیسری چیز ہوتی ہے، پہلی کیا تھی؟ لذت، دوسری ہے نفع، اور تیسری اس بندے کی اہلیت، یعنی اس کا کوئی علم اور فضل. پھر اس سے بات بنتی ہے اور پھر بات جاتی ہے کہ انسان اس محبت کو سمجھتا ہے. اور یاد رکھیے گا، جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا بندے کو، کسی بھی چیز سے، اب یہاں کی تال کی محبت ہے، آپ ذرا مجاہدین کے نشید تو سنیے. وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں ہم بیٹھے ہوں اور دشمن ہمیں کاٹ دے. اب یہ انسان کی فطرت ہے، جس نے اس اصل کو پا لیا تو وہ چیز اس کے ساتھ موجود ہو گئی. تو بہرحال یہاں آپ کو مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. اس ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہمیں اپنی زندگی سے منمانی نکالنی ہے، اللہ کی مرضیوں کو ماننا ہے. ہم اپنے رب کو یہ بتا دیں کہ میرے مالک، تو نے میرے لیے زندگی میں جو چیز رکھی ہے میں اس پہ خوش ہوں. تقدیر کے معاملوں سے لے کر شریعت کے معاملوں تک، مجھے آپ کو اس شریعت پہ کچھ چھانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ کریں وہ کریں، اس طرح ہو ویسا ہو، مجھے آپ کو اس کا حق ہی نہیں ہے، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری صلاحیتوں میں جو چیز رکھ دی، اب میرے اندر ایک خوبی نہیں ہے، میں روؤں گی، میں دھوؤں گی، مجھے وہ خوبی پھر بھی کوئی نہیں ملنی، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ میں اس خوبی کو اپنی زندگی میں جو استعمال کروں جو میرے مالک نے مجھے دی ہے. تو یہی خلاصہ ہے. اور یاد رکھے کہ خوش رہیں گے. ہم بہت سارے رشتوں کو پسند ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے بھلا؟ کیونکہ وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے. آپ کے نہیں، آسان تک رہو شعین و ہوا خیر الکم. پھر اسی طرح دیکھیے، پسند کی چیزیں کون سی ہیں؟ نیند بڑی اچھی لگتی ہے، آپ دیکھیں زیادہ نیند لیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے، زیادہ کھائیں گے تو وزن بڑھ جائے گا، اوور ویٹ ہو جائیں گے. اب آپ کو مرچیں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ کھائیں گے آپ کے اسٹمک میں السر ہونے کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچا کے رکھے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو چینی بہت اچھی لگتی ہے، میٹھا کیک سب کو بڑا اچھا لگتا ہے، پر کھائیں گے تو نقصان کیا ہوگا اس کا؟ اس کے کھانے کے بعد آپ کے دانت خراب ہو جائیں گے. تو زندگی میں اعتدال چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا، پیچھے بھی آپ نے پڑھا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے ہمارے لیے حد بندیاں بھی کر دی. اور یہ سب کچھ سکھا کر اب آگے ایک اور ایشو کھڑا ہوا تھا، وہ بھی اس سے بہت ملتا جلتا ہے.